आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संकट पर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिर्जापुर के परमहंस आश्रम में लिया संतों का आशीर्वाद। और रूस अमेरिका से कच्चा तेल और LPG लेकर जहाज भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्र की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश भर में जरूरी संसाधनों की निर्बाध आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में किसी निर्वाचित सरकार का सबसे लंबे समय तक नेतृत्व करने वाले शासन अध्यक्ष बन चुके गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मिलाकर उन्होंने 8,931 दिन का कार्यकाल पूरा किया, जो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनका जीवन सेवा का निरंतर सफर रहा है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये पूरा कार्यकाल राष्ट्र प्रथम की भावना और हर नागरिक के लिए अथक सेवा का प्रतीक है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई सामान्य है और घबराहट में की जा रही बुकिंग भी अब कम हुई है। मंत्रालय का कहना है कि अस्पतालों और स्कूलों समेत जरूरी जगहों पर वाणिज्यिक LPG की आपूर्ति बढ़ाई गई है। वहीं जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए पूरे देश में छापेमारी जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित श्री परमहंस आश्रम पहुंचकर स्वामी अड़गानंद महाराज से भेंट की। डॉक्टर यादव ने उन्हें 2028 के उज्जैन सहस्त्र महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने संतों और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि संतत्व से ही देवत्व की प्राप्ति संभव है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में भगवान राम व कृष्ण से जुड़े स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल UPSC परीक्षा में चयनित प्रदेश के 61 होनहार अभ्यर्थियों को संवाद कर उनका सम्मान करेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित सफलता के मंत्र कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थी अपनी मेहनत और संघर्ष की कहानियां साझा करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। और अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज पुणे के उरली कंचन में एक प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम की 81वीं वर्षगांठ में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों से प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय किसान अब ईंधन और ऊर्जा उत्पादन में सक्षम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इंडियन ऑयल के साथ मिलकर पानीपत में धान के भूसे से इथेनॉल, बायो मिटुमैन और विमानन ईंधन बना रही है। श्री गडकरी ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी के जरिए देश को डीजल आयात की जरूरत ही नहीं रहेगी।
हमें ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, ट्राइबल के सेक्टर में जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा कि हमारे देश में हम 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस को हम आयात करते हैं। अभी हमने कामयाबी हासिल की है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता बन सकता है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल कनेक्शन पहुंच चुका है। जल महोत्सव 2026 के समापन समारोह में उन्होंने बताया कि इससे स्वास्थ्य सुधार के साथ साथ महिलाओं के जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव आया है। मध्य प्रदेश भाजपा ने महिला मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति के बाद ये टीम गठित की गई है। अश्वनी परांजपे के नेतृत्व में बनी इस नई टीम में राजगढ़ से पूर्व कांग्रेस नेता मोना सुस्तानी को प्रदेश महामंत्री की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। असम, केरल और पांडुचेरी में नामांकन की प्रक्रिया कल शाम समाप्त होगी और इन तीनों जगहों पर अगले महीने की 9 तारीख को एक ही चरण में मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 23 व 29 अप्रैल को दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव अधिसूचना 30 मार्च को जारी होगी। सभी पांचों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नतीजे 4 मई को आएंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2026-27 में 18,48,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल 16,48,000 करोड़ थी। सरकार ने नए वित्त वर्ष के लिए 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें विकास, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचों पर जोर दिया गया है। बुनियादी ढांचों के लिए 80,266 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय रखा गया है। ग्रामीण विकास में 37%, महिला एवं बाल विकास में 26% और राजस्व विभाग में 43% बजट बढ़ाया गया है। प्रदेश में इन दिनों जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नदियों, तालाबों, कुओं और बावियों को नई जिंदगियां दी जा रही हैं। 19 मार्च को शुरू हुआ यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस बार सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अभियान के तहत 50 नए अमृत सरोवर बनाए जाएंगे और सदियों पुरानी बावड़ियों को भी संरक्षित किया जाएगा। माई भारत पोर्टल पर जलदूत बनकर भी आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। भाजपा किसान मोर्चा कल से 29 मार्च तक प्रदेश भर में किसान सेवा पखवाड़ा अभियान चलाएगा। अभियान की शुरुआत 62 मंडियों में प्याऊ और स्वास्थ्य शिविरों से होगी, जबकि 25 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जन्मदिन पर उन्नत और जैविक किसानों को सम्मानित किया जाएगा। समापन पर 29 मार्च को 62 मंडियों को मन की बात कार्यक्रम का आयोजन होगा। जबलपुर नगर निगम ने एक अनूठा अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम पतझड़ के पत्ते कचरा नहीं है रखा गया है। अभियान के तहत सूखे पत्तों को जलाने की बजाय जैविक खाद बनाई जाएगी। नगर निगम के नागरिकों से पत्ते अलग इकट्ठा कर निगम की टीम को सौंपने की अपील की है। खाद बनाने के लिए शहर में 5 कम्पोस्ट प्लांट बनाए गए हैं और तैयार खाद नागरिकों को मुफ्त में दी जाएगी। खंडवा के नया हरसूद में 3 दिवसीय आदि रंग महोत्सव का समापन हुआ। जनजातीय नृत्य, संगीत और शिल्प कला पर केंद्रित इस महोत्सव के समापन समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह सम्मिलित हुए। अंतिम दिन रानी दुर्गावती नृत्य नाट्य के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों के लोक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में जल संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा सिंहवासा तालाब एवं गुनिया नदी मार्ग का निरीक्षण किया गया। शहडोल में जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण में जल संरक्षण एवं संवर्धन के काम शुरू हो गए हैं। खंडवा में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में भूकंप पूर्व तैयारियां एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला 25 मार्च को आयोजित की जाएगी। अनूपपुर में अब तक HPV टीकाकरण अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष 3 माह की 1684 बालिकाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। और नर्मदापुरम में माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय में जल गंगा संवर्धन अभियान पर संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें विद्यार्थियों को इस अभियान से जोड़ा गया। और प्रदेश में 4 दिन की बारिश के बाद आज तेज धूप निकली। स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है और सभी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट बनाई जा रही है। सीहोर के CMHO डॉ. सुधीर डहरिया का कहना है कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में न निकले, खूब पानी पिए और सूती कपड़े पहने। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।